ਬੇਦਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆ ਪਾਵਨ ਹੋਣੇ ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਉਸਕੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਫਲ ਏਕ ਮਾਤਰ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੀ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਕਹੀਂ ਸਰਵਗ ਕਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਅਰੂਪ ਕਹੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕਹੀਂ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵਿਧੀ ਵੀ ਉਸੀ ਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭੇਦ ਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਸੇ ਸ਼ੁਰਤੀ ਬਾਕੋਂ ਕੀ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਯਦਿ ਐਸਾ ਕਹੇ ਤੋ ਯਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੀ ਸ਼ੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਏਕ ਮਾਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਸੇ ਸਥਿਤ ਕਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੇ ਹੀ ਕਰਮ ਵਿਧੀ ਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਭਾਵ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਕੇ ਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿੱਧ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਕਰ ਵੀ ਏਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ ਮੈਂ ਨਿਹਿਤ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਅਥਰਵਣਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕੇ ਮੰਡੂਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨੀ ਕੋ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਸ਼ਿਰੋਵਰਤ ਕੀਆ ਹੋ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰੋਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਵਹਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਰੋਵਰਤ ਪਾਲਣ ਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਹੋਮ ਕਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਈਓ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਅਨਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਸਿੱਧ ਹੁਆ ਕਿ ਅੰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਿਰੋਵਰਤ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਯਮੋ ਕੇ ਭੇਦ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰਤੀਓ ਨੇ ਭੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਮਿਸ਼ਰ ਤਵ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਸੁਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵੇਦ ਉਸੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਭ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਏਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਵੀ ਉਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਏਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰ ਆਦਿ ਕੇ ਨਿਯਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਰੂਪ ਸੇ ਅੰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੇ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਰ ਏਕ ਸ਼ਾਖਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਕੋ ਅਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੇ ग्रहण कर लेते हैं। यदि यह कहो कि दोनों प्रकार से विद्या का वर्णन होने से वे दो विद्याएं पृथक पृथक हैं, क्योंकि संयोग में दहर विद्या और छोटी और पाजा प्राजापत विद्या से दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया है। दहर विद्या के प्रकरण में मनुष्य देह रूप ब्रह्मपुर में हृदय रूपी ग्रह में अंतराकाश के भीतर वाली वस्तु को जानने का उपदेश है, और प्राजापत अंतराकाश के भीतर वाली वस्तु को जानने का उपदेश है, और प्राजापत विद्या के प्रकरण में अपहत पापात्मा आदि विशेषता वाले आत्मज्ञान का उपदेश है। इस प्रकार दोनों विद्याओं के पिंतव के कारण वे एक नहीं है, परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहर विद्या में जिसे जानने योग कहा गया है उसी ब्रह्म को प्राजापत विद्या में आत्मा मन रूप से अपने योग बताया है। इस प्रकार दोनों विद्याओं का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन होने पर भी वे एक ही है। छंदोग में उद्गीत के अवैध वर्णन की जो प्रणव की उपासना बताई गई है उसमें उद्गीत को प्रणव ओंकार के साथ एकाकार किया है। यह उपदेश विद्या अत्यंत श्रेष्ठ फल वाली है, किंतु बृहदारण्यक में जिस उद्गीत विद्या का प्रतिपादन हुआ है वह प्राणी की उत्कृष्टता और जगादी में उद्गीत ज्ञान द्वारा स्वर की शब्द की विशेषता प्रदर्शित करने वाली है। विशेषता इसमें छंदोग की उद्गीत विद्या के समान श्रेष्ठ फल का भी निर्देश नहीं है। दोनों उपनिषदों में देवासुर संवाद रूप विषम की समानता होने पर भी उपासना विधि में भिन्नता है। इस प्रकार की भिन्नता दहर विद्या और प्राजापत विद्या में नहीं है, क्योंकि उनमें वर्णन मात्र का भेद है, इसलिए इन दोनों विद्याओं का भिन्न भिन्न होना सिद्ध नहीं होता। यदि ऐसा कहो कि दहर विद्या और प्राजापत विद्या दोनों में नाम का भेद है, इसलिए दोनों पृथक पृथक है, तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। ब्रह्म विद्या का विभिन्न श्रुतियों में विभिन्न नामों से वर्णन हुआ है, परंतु उनके नाम की भिन्नता से ब्रह्म विद्या के एक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन विद्याओं में नाम आदि का भेद और उद्देश्य भेद है उन विद्याओं का वर्णन भी श्रुतियों में हुआ है, परंतु उन विद्याओं में ब्रह्म विद्या का कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म की सर्वव्यापकता प्रसिद्ध है। श्रुतियों में ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व को प्रतिपादित किया है। सिमृतियां भी उन्हें ऐसा ही बताती है। इसलिए ब्रह्म विद्याओं का विभिन्न प्रकार से वर्णन होने पर भी वे एक ही हैं और सभी का आदेश केवल ब्रह्म की प्राप्ति ही सिद्ध होता है। विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार से कही हुई ब्रह्म सुगंधी अन्य विद्याओं में भी भेद नहीं है, क्योंकि अन्य स्थलों पर कहे हुए सब हेतु ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही निर्दिष्ट हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सुगंधी सभी विद्याएं एक है। ब्रह्म के जिन गुणों का वर्णन श्रुति में एक स्थान पर किया है, उन्हीं गुणों को उपसंहार समाप्ति रूप से अन्य स्थानों पर भी कहा है। इस प्रकार जिन गुणों की विशेषता पहले कहने से रह गई है, वह अन्यत्र कह दी गई है। तैतरीय उपनिषद में उस आनंदमय आत्मा का प्रिय शिर है, बोध दक्षिण और प्रमोद उत्तर पांख अर्थात दाएं बाएं हाथ हैं, इस प्रकार कल्पना की गई है। यह लक्षण ब्रह्म का नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अंग वाला मानने से ब्रह्म में कटने बढ़ने का दोष उपस्थित होगा। इसलिए शिरादि का वर्णन और रूपक के टांग के कहे गए हैं। अवैध की भावना वाले गुण को रूपक भाव मात्र है, परंतु उससे भिन्न आनंद आदि गुण कहे हैं। वे ब्रह्म के स्वभावक गुण हैं, उनका अर्थ भी गुण के समान ही है, इसलिए उन गुणों का कहना युक्ति संगत ही है। इस रूपक में अवैधों का वर्णन करने से किसी अन्य प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म का भले प्रकार चिंतन हो सके, इसी उद्देश्य से ऐसा वर्णन किया गया है। जो ब्रह्म किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता और भी हृदय गुहा में छिपा बैठा है, उसका स्वरूप ज्ञान बुद्धि के द्वारा ही संभव है। रूपक में पूर्ण के अंगों का रूपक के पुरुष के अंगों का पक्षी से तुलनात्मक वर्णन कर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पुरुष का वर्णन किया है। इससे सिद्ध होता है कि सूक्ष्म तत्व के विश्लेषण द्वारा एक अंतरात्मा को ही लक्षित किया है। आनंदमय को विज्ञानमय का अंतरात्मा कहा है, परंतु उस आनंदमय पुरुष का अंतरात्मा उन्होंने कोई नहीं कहा। इससे सिद्ध होता है कि सब का अंतरात्मा अंतरात्मा और रूप आनंदमय ब्रह्म ही है। एक श्रुति में एक आत्मा ही था, उसने लोकों को रचूं जय इच्छा की, ऐसे वर्णन में आत्मा में शब्द को ब्रह्म का ही पर्याय माना है। इसी प्रकार कहकर दूसरी श्रुति ने भी ब्रह्म के द्वारा बहुत हो जाने की इच्छा का समर्थन किया है। इस प्रकार उस आत्मा नामक ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कही गई है। उससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण हुआ है। यदि कहो कि आत्मा शब्द जीवात्मा का भी अन्वय ही अन्वय हो सकता है, इसलिए आनंदमय के साथ अन्वित आत्मा से ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता, तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह पहले ही निश्चित हो गया कि इस आत्मा से आकाश हुआ। इस प्रकार ब्रह्म में बुद्धि हुई, फिर अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में प्रथम बार ब्रह्म में बुद्धि बनी, प्राणमय से मनोमय में और बाहों से विज्ञानमय में बुद्धि हुई, विज्ञानमय से आनंदमय में पहुंची। जब आनंदमय से आगे कुछ है ही नहीं, तो वह बुद्धि वही स्थिर हो गई। इस प्रकार सिद्ध होता है कि आनंदमय से यहाँ ब्रह्म का ही उपदेश हुआ है। अनरस युक्त जिस पुरुष का वर्णन इस प्रकरण में किया है, यह ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णन से जान पड़ता है कि यहाँ उन नाम से मनुष्य का ही कथन है। परंतु ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आनंदमय शब्द ब्रह्म के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। कर्म फल की प्राप्ति, स्वरूप सुख दुख का भोग करने वाला मनुष्य आनंदमय नहीं कहा जा सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म के हेतु में कहा गया है, वाय स्नेही शाखा में अग्नि रहस्य विद्या जिसे छंडलय विद्या भी कहा गया है, मैं ब्रह्म के जय गुण कहे हैं, वो आत्मा की उपासना करें जो मनोमय प्राण शरीर और प्रकाश रूप है। फिर उसी शाखा के बृहदारण्यक में कहा है कि इस मनोमय प्रकाश रूप सत रूप पुरुष के हृदय में चावल या जौ के छिलके से टकी मींग के समान यह ब्रह्म है, जो सबका स्वामी सबका अधिपति और इस सबका शासक है। जो कुछ भी है वही है। शंका यह है कि बाज स्नेही शाखा वालों ने जिन विद्याओं को दो स्थान पर दो प्रकार से वर्णन किया है, वे एक ही है। इसका समाधान ये है कि विभिन्न शाखाओं में विद्या की समानता और गुणों का उपसंहार होने के समान एक शाखा में भी वैसा होना संभव है। जहाँ उपास्य में भिन्नता नहीं, वहाँ भेद मानने का कोई भी कारण नहीं है। अन्य स्थलों पर भी उपास्य उपासक का संबंध दिखाते हुए ब्रह्म विषयक विद्याओं का वर्णन हुआ है। बृहदारण्यक में अक्षी और आदित्य सुगंधी, आंख और सूर्य सुगंधी वर्णन आया है। दोनों को अहर दिन और अहम कहा है। इसे पृथक दो उपासना बताकर उनका संबंध एक ही उपास्य से किया गया है, तो इनमें भेद माना जाए या नहीं, यह शंका होती है। उपरोक्त सूत्र में जो शंका की गई है उसका समाधान यह है कि इन दोनों उपासनों में स्थान और नाम दोनों में ही भेद है, क्योंकि एक में सूर्य मंडल और दूसरे में दक्षिण नेत्र स्थान कहा है। इस प्रकार नाम और स्थल भेद होने से परस्पर गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता। इसे सिद्ध हुआ कि इन विद्याओं में उपास्य और उपासना की एकता नहीं है। विद्या एकता को मानकर गुणों का उपसंहार करने की यहां आवश्यकता होती है, वहां श्रुति स्वयं ही ऐसा विधान कर देती है। छंदोग श्रुति में अतिदेश किया है कि इस नेत्र में रहने वाले का जो गुण है वही इस अदित नवासी पुरुष का है। यदि एक के गुण दूसरे में कहे गए होते तो इसका रूप है वही इसका रूप है, इस प्रकार स्पष्ट करने की श्रुति को आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्म जगत कारण होने से साथ ही लोगों का पालन करता और जड़ चेतनात्मक सुपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यह गुण नेत्र में रहने वाले का सूर्य मंडल में निवास करने वाले पुरुष के नहीं हो सकते। उपरोक्त विद्याओं की एकता का सिद्ध न होना और गुणों का उन पुरुषों में न हो सकना या दोनों कारण उपरोक्त पुरुषों में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार न होना सिद्ध करते हैं। ब्रह्म का पुरुष नाम से यहां वर्णन किया है, वहां पुरुष के लक्षण भी अद्भुत ही कहे हैं। मंडूक उपनिषद में पुरुष नाम से जिस अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया है उससे सब की उत्पत्ति और उसी में सब का विलीन होना बताया है। फिर उसी को दिव्य और अमूर्त पुरुष कहा है और उसी से समस्त प्राण इंद्रिय पंचभूत आदि सहित इस जगत की उत्पत्ति कही है। उसी को सब कुछ उसी को तप उसी को कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म प्रतिपादित किया है। इस प्रकार के गुण ब्रह्म के स्वभाव किसी अन्य पुरुष के नहीं हो सकते। इस सूत्र से ब्रह्म को परणव रूपी बाण से खींचने योग कहा है। मुंडक उपनिषद में कहा है कि हे स्वम उपनिषद में कहे गए ओंकार रूप महान तनुष पर उपासना से तेज किया हुआ बाण चढ़ाए और भाव पूर्ण चित्त से उस बाण को खींचे। इस प्रकार अविनाशी ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर विदना चाहिए। इस प्रकार ओंकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना का ही उपदेश किया है। वहां अर्थ भेद से कुछ अन्य कल्पना नहीं करनी चाहिए। श्रुतियों में मुमुक्षु पुरुष के शुभ अशुभ कर्म की हानि की बात कही गई है। उसके शुभ कर्म मित्र ले लेते हैं और अशुभ कर्म शत्रुओं को प्राप्त होते हैं। जैसे चपटानों में है सुहृद साधु कृत्या द्विष्यंता पाप कृत्याम। जब शुभ शुभ कर्म समाप्त हो गए तो उसके पास क्या रहा। इस पर यहाँ व्यवस्था दी गई है कि हानि के साथ उपायन शब्द शेष ही अर्थात विवाह का शेष अंश रूप फल प्राप्ति को भी उसका अनुगत समझना चाहिए। इस प्रकार जहाँ जहाँ कर्म की हानि का वर्णन है और फल के संबंध में निर्देश नहीं है वहां वहां कर्म की उपलब्धि रूप फल का भी विद्या की समानता से अध्याहार बद्ध कल्पना कर ले। इस संबंध से सूत्राकार ने चार उदाहरण दिए हैं। पहला कुशा कुशावान स्वंद में सूत्रा कुशावान में सुपत्या रथ ता मा पात। इसमें केवल वनस्पति की कुशा का ग्रहण कहा है परंतु चाकट्यायनी उदम्भ्रा कुशा से गुलर की कुशा लेकर पूर्ति करते हैं। दूसरा छंद छंदो भी सतुबीत के अनुसार छंद मात्र का कथन है परंतु अन्य स्थल पर देव छंदासी द्वारा देव पद की अनुवृत्ति द्वारा कथन की गई है। उस्तुति हिरणेन खोड़शिना सतोत्तर मपा करोती के अनुसार श्रुति का कोई विशेष समय नहीं माना है परंतु अन्य स्थल में समा अधोषते सूर्य खोड़शिना इत्यादि से समय विशेष जोड़कर अर्थ पूरा किया है। और चौथा उपगान एक शाखा वाले ऋतवज उपगायंती ऋतवज स्तोत्र गान करे यह समान रूप से कहते हैं परंतु अन्य शाखा वाले नात्यावर रूप गायती से अर्ध अर्ध्यों को स्तोत्र मानने गाने का निषेध करके वाक शेष रूप से पूर्ति करते हैं। इन उदाहरणों से सिद्ध हुआ कि कर्म नाश के साथ उपलब्धि रूप फल को शब्द शेष के रूप में ग्रहण करना उचित है। मुमुक्षु ज्ञानी के सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्रुतियां ऐसा कहती है मुंडक शाखा वाले तदा विद्वान पूर्ण पापे विद हुए निरंजना परमं साम्यपैति कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि उस समय वह विद्वान पूर्ण पाप दोनों को छोड़कर गोपार रहत हो परम साम रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वृंदारण्यक में उवे उहे वैश इते तरती कहकर ज्ञानी का पूर्ण पाप दोनों को यही पार करना बताया है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रलोक में जाते समय भोग द्वारा पार कराने वाला कोई कर्म फल बाकी नहीं रहता। साधक जिस प्रकार का संकल्प रखता है वैसी ही गति उसे प्राप्त होती है। चंदोग में कहा गया है कि जय पुरुष अवासी ही संकल्प में है, इस लोक में वह जैसे स्कल्प से युक्त होता है वैसे ही स्कल्प वाला लोक में होता है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार की गति होना शास्त्र सम्मत है और इसका कहीं भी विरोध नहीं हुआ है। साधक की गति संकल्प के अनुसार मानने पर मुक्ति के दोनों प्रकार मन होते हैं। एक तो यह कि साधक ब्रह्म दर्शन की इच्छा से साधन में लगा हो तो वह कर्म का त्याग कर परलोक गमन करेगा और ब्रह्म दर्शन की कामना के अतिरिक्त यानि केवल मुक्ति की कामना करे तो उसे मृत्यु के पश्चात तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। यदि करे तो उसे मृत्यु के पश्चात तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। यदि ऐसा न मानोगे तो दोनों प्रकार से वर्णन करने वाली श्रुतियों में विरोध का प्रसंग उपस्थित होगा। इस प्रकार साधु के संकल्प अनुसार दोनों प्रकार से सदगति होना सिद्ध होता है। प्रश्न उपनिषद ने कहा है कि जीव जिस संकल्प वाला होता है उस संकल्प से मनुष्य प्राण में स्थित होता है, मुख प्राण उदान में स्थित होता है। मन इंद्रिय जो जीव को संकल्पगत लोक में ले जाता है। इस प्रकार देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्म लोक में जाने वाली गति का वर्णन हुआ। वह धारणक में दूसरे प्रकार की गति का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि जो कामना रहत निष्काम पूर्ण काम ब्रह्म की इच्छा करता है उसके प्राण ऊपर के लोकों में गमन नहीं करते। वह जहाँ ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इससे सिद्ध हुआ है कि साधक की दोनों प्रकार की गति होना श्रुति सम्मत है। जिसे ब्रह्म लोक गमन करना है उसके लिए ऊपर युक्त सूक्ष्म शरीर की आवश्यक है। लोक में भी यही मिलता है कि यात्रा के समय आवश्यक साधन लेने ही पड़ते हैं। इस प्रकार सूत्राकार का कथन युक्ति संगत मानना चाहिए। साधना करने वालों को विभिन्न सिद्धियों द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति श्रुतियों ने बताई है, किंतु उन सभी में देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में पहुंचने की बात नहीं कही गई है। इसी प्रकार स्मृतियों में भी सब स्थानों पर उस मार्ग का वर्णन नहीं किया गया है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जहाँ देवयान मार्ग का वर्णन नहीं हुआ है उस साधना द्वारा बिना देवयान मार्ग के सीधे ही ब्रह्म लोक में पहुंचने का विधान है, परंतु ऐसा नहीं। फल प्राप्ति रूप ब्रह्म लोक गमन के लिए सब प्रकार की साधनों में देवयान मार्ग के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। श्रुतियों और स्मृतियों दोनों में ही इसका विरोध न होने से जय मान्यता ठीक समझनी चाहिए। मोक्ष के अधिकारियों का अधिकार कर्म फल रूप भोग साथ चलता है। जब तक वह उन अधिकारों का उपभोग नहीं कर लेते तब तक वह फल स्वरूप मुक्ति का उपभोग करते रहते हैं, परंतु कर्म फल के शेष न रहने पर उनकी मोक्ष की स्थिति समाप्त हो जाती है और उन्हें मर्तलोक में लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जिसके कर्म फल रूप मुक्ति की प्राप्ति नहीं कराते वे इस संसार में ही मुक्त अवस्था में भोगों को भोगते रहते हैं। बृहदारण्यक के अनुसार उस तत्व को अविनाशी ब्रह्म कहते हैं। मैं मोटा पतला छोटा बड़ा लाल चिकना नहीं है। इस प्रकार जीव से ब्रह्म को بلکھن کہا ہے مندوپ اپنشت میں کہا ہے کہ آگے پڑا ہے جیسے جے اکشر برہم جانا جاتا ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ کانٹ والا نہ رنگ والا ہے اسے بھی اندریوں دوارا گرہن نہ ہو سکنے والے برہم کی بلکشنتا کا پرتیپادن ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اسے سرو ویاپی جگت کارن آدی کہا گیا ہے. برہم کے ان لکشنوں کو برہم پرک پرائن پرکارن میں سب جگہ گرہن کر لینا اچت ہے. اپست کرم کے سمان ان کا ادھیاہار کر لینے کی بات جگتی سنگت ہے. چوتیوں میں کو وچن سے سماپت ہونے والے شبدوں کو پریوکت کر جیو اور برہم کو ہردے میں ستھت کہا گیا ہے. جیسے پرسپر متر بھاو والے دو پکشی ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک ہی ورکش کے آشرے میں رہتے ہیں, ان میں سے ایک کرم پھل روپ کا بھوگ کرتا ہے اور دوسرا بھوگ نہ کر کیول دیتا رہتا ہے. یہ منڈک اور شویتاشویر چرتی باق ہیں. اسی طرح کا شرتی میں بھی ہردے گوہا میں شپے چھایا اور توپ کے سمان پینسوا والے دونوں جیو اور ایشر کا ورنن ہوا ہے. اس سے ان تینوں ستھلوں پر کئی ہی ودیا ایک ہی ہے, کیونکہ ان میں برہم کا ایک سا ہی ورنن ہوا ہے. برہدارنک میں چاکریان جاگولک سمباد میں پران پرانن تھیان میں تھیانن ادان میں ادانن کرنے والا سروانتر آتما کہا ہے. آگے چل کر کہول سے جاگولک جی نے کہا ہے کہ شوق موہ پوک پیاس کو جس نے مار لیا بہی ساکھیات سروانتر برہم ہے. شویتاشویر میں بھی سب جیووں میں چھپا ہوا ایک دیو سرو ویاپی سب پرانیوں کا انتراتما سب کے کرموں کا ادھشٹھان کرنے والا سب کا آشرے سب کا ساکشی سروتھا وشدھ اور نرگن کہا ہے. اس پرکار سب کا انتراتما برہم کا ہونا ہی سدھ ہوتا ہے. جدی کہو کہ پروکت ورنن میں جیو اور برہم کے پیڑ کو یتھارتھ مان لے تو پیڑ ہونا سدھ نہیں ہوگا, پرنتو ایسا ماننا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ان ستھان پر اپید کہنے سے جہاں بھی اپید سدھ ہوتا ہے. چھندوگ میں سد ودیا کے پرکرن میں شویت کیتو نے کئی بار پرشن کیا اور کئی بار اتر دیا گیا ہے. اسی کے سمان پرتھک سروانتر اور سرو پرانیوں کو پرانن کرنا اور دوتیے نشنادی سے اتیت پنے کی بات سے سدھ ہوتا ہے کہ دونوں میں اپید کا ہی ورنن ہوا ہے. ایک دوسرے کے ترنوں کا پرسپر آروپ کتن کرنا بیتی ہار کہا جاتا ہے. جیسے جو میں ہوں سو بہ ہے, جو بہ ہے سو میں ہوں, اتوا اے بھگوان تم میں ہوں اور میں تم ہیں. اس پر جو ادلا بدلی کی بات وہاں کہی جاتی ہے جہاں ان وستو کے سمان یتھارتھ روپ سے بھنتا ہو اور پرکار انتر سے بھنتا بتانی ہو. ان سے یہی سمجھنا چاہیے کہ جیو اور برہم کی بھنتا نہ ماننے کے لیے اس پرکار کہا گیا ہے. یدی اپادی کرت بھید کہا گیا ہوتا तो इस प्रकार का वर्णन नहीं हुआ होता। उपरोक्त सूत्र में जो मान्यता है उसी का अनुमोदन समता शलाघा इस सूत्र में किया गया है। ब्रह्म के जो लक्षण सात संकल्प सात कान सर्वज्ञ अविनाशी आप कहे हैं, वे ब्रह्म के सिवा जीवात्मा आदि किसी में नहीं हो सकते। जब जीवात्मा में लक्षणों की भिन्नता सिद्ध होती है तब उनका ब्रह्म से अत्यंत भेद इसी प्रकार सिद्ध नहीं होगा। जिन श्रुतियों में निर्विशेष रूप का प्रतिपादन किया है उनमें भी ब्रह्म के सात काम सर्वाग्रादी के लक्षणों का होना सिद्ध होता है, क्योंकि उन श्रुतियों ने उसे सबका आधार होना कहा है। ब्रह्म ज्ञान के फल का जहां जहां वर्णन मिलता है वहां मोक्ष द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का ही प्रतिपादन प्रायः किया गया है, इसलिए उसी फल को बलवान समझना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति से भिन्न अर्थात दिव्य भोगों की प्राप्ति रूप फल का जहाँ कहीं वर्णन हुआ है वह ब्रह्म प्राप्ति प्रमुख फल का महत्व प्रदर्शित करने वाला ही है, दिखाने वाला, क्योंकि वैसे फलों का रूप वर्णन सभी स्थलों पर नहीं हुआ है। उपासना संबंधी शरीर क्रियाओं के समान मानसिक क्रियाओं से भी फल की प्राप्ति होती है। जो फल यज्ञ आदि कर्मों से मिलता है वैसा ही फल जप और भजन से भी मिलना संभव है। गीता में भजन का महत्व बताते हुए निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। भगवान ने मन लगाना ही भजन कहा गया है। भजन में ही भक्ति भगवान में भजन में ही भक्ति शब्द निहित है। भगवान ने स्वयं भक्त उपासक की महत्ता बताते हुए निराकार ब्रह्म में चित्त लगाने वाले साधन में क्लेश अर्थात अलख परीक्षण बताकर उस गति की प्राप्ति दो साध कही है। इसके बाद भजन करने वाले भक्तों का मृत्यु संसार मंदिर से शीघ्र ही आधार होना बताया है। इसे शरीर क्रिया और मानसिक क्रिया दोनों से मोक्ष होना सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अग्नि विद्या से भी मोक्ष होने की बात काटश्वर्ती में जमराज बताते हैं। इस अग्निहोत्र के तीन अनुष्ठानों से जन्म मरण से पार होकर मनुष्य अत्यंत शांति प्राप्त करता है। तीनों प्रकार के कर्मों को करने वाले को जन्म मरण से पार होने का उपदेश है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यज्ञ तप और भजन इन तीनों से मोक्ष प्राप्त संभव है, परंतु श्रुतियों में ब्रह्म प्राप्ति का साधन और मोक्ष प्रदायिनी ब्रह्म विद्या को ही कहा है। इसलिए अन्य विधियों का कर्मों से वैसा फल प्राप्त होने पर भी ब्रह्म विद्या ही प्रमुख है। अन्य विद्याओं के संबंध में निश्चित रूप से ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली नहीं कहा है। श्रुतियों में कर्मों का फल ब्रह्म लोक में जाकर लौटना कहा है, परंतु परम मोक्ष नहीं बताया। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ही श्रुतियां परम मोक्ष का विधान करती है। इससे भी ब्रह्म विद्या का सर्वश्रेष्ठ होना ही सिद्ध होता है। किसी प्रसंग के निर्णय में उससे संबंधित श्रुति वाक और लक्षण आदि प्रमाणों को अधिक मान्यता दी जाती है। ब्रह्म ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ होने के संबंध में श्रुति प्रमाणों और लक्षणों को अधिक की अधिकता है, इसलिए उसे ठीक मानने में कोई बाधा नहीं रोकने। विभिन्न प्रकार की उपासनाओं के विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। वह उपासना अपने अपने साध और साधन के अनुरूप ही खालवती होती है। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म विद्या में साधक की भिन्न भिन्न भावनों के अनुसार प्रकार और फल में विभिन्नता होना संभव है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि यदि ब्रह्म विद्या के फल में ब्रह्म लोक के दिव्य भोगों का संकल्प हो तो उसमें ब्रह्म प्राप्ति कैसे संभव है। वो साधु को तो ब्रह्म लोक के दिव्य भोग ही फल रूप में मिलेंगे। जो साधु भोगों को तुच्छ समझ कर ब्रह्म को ही प्राप्तव्य मानते हैं वे ही उसका दर्शन करने के अधिकारी हैं। सब विद्या ब्रह्म विद्या मोक्ष प्रदान करती है। इस मोक्ष रूप फल में तो तभी सभी की समानता है परंतु उनमें से किसी के द्वारा ब्रह्म लोक में जाना, किसी के द्वारा ब्रह्म दर्शन करना, किसी के द्वारा दिव्य भोग भोगना, किसी के द्वारा ब्रह्म लोक ना जाकर इसी लोक में मुक्त हो जाना इत्यादि किंचित फल भेद है। इन भेदों में भी जिसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति कही गई है वो साधना वाला साधक भोगों से निर्लिप्त रहकर और भगवान प्राप्ति के सिवा अन्य किसी कामना को न करता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह फिर किसी लोक को जाने के लिए लौटता नहीं। ब्रह्म की ही कामना वाले साधकों का दहक सुगंध छूटता है। ये सुगंध में परस्पर पुरुष वह ब्रह्म ज्ञानी नाम रूप को यही छोड़कर परात पर पुरुष को प्राप्त होता है या श्रुति है। इस प्रकार नाम रूप से मुक्ति हुई तो दैहिक बंधन भी समाप्त हो गए, परंतु जिस उपासना में ब्रह्म प्राप्ति के साथ अन उपलब्धियों की कामना रहती है वहां दैहिक बंधन नहीं छूट पाते और ब्रह्म लोक की प्राप्ति के पश्चात भी अन्य भावों की अधिकता के कारण उन्हें पुनर्जन्म ग्रहण करना होता है। नास्तक मत वाले आचार्य शरीर के साथ ही आत्मा का संबंध मानते हैं। उनका विचार है कि जब शरीर है तभी तब इसमें चेतन रूप आत्मा मालूम होती है। शरीर के समाप्त होने पर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। शरीर और आत्मा को एक बताना असत्य है क्योंकि मरने पर शरीर तो रहता है परंतु उसमें आत्मा नहीं रहता। इस प्रमाण से भी शरीर और आत्मा का एक होना मन नहीं है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है वैसे ही शरीर और आत्मा का एक न होना प्रत्यक्ष देखा जाता है। यदि ये शंका परे के शरीर के साथ आत्मा भी नहीं रहता तो यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि शरीर को त्याग कर भी आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में रहता है। इससे सिद्ध है कि आत्मा और शरीर एक नहीं है। उद्गीत से संबंधित उपासना का जिन शाखा वालों ने वर्णन किया है वही उसकी उपासना कर सकते हों ऐसी बात नहीं है, किंतु सभी वेदों की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई जिस शरीर एक शाखा के मंत्र और यज्ञोपयोगी साधनों का अन्य सब शाखा वाले आवश्यकता अनुसार उपभोग कर लेते हैं वैसे ही उद्गीत आदि अंगोपासनाओं का सभी शाखा वाले अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जैसे यज्ञ का अनुष्ठान सर्वांग पूर्ण किया जाना ही श्रेष्ठ माना जाता है वैसे ही उपासना का अनुष्ठान भी सर्वांग पूर्ण होना चाहिए। वैश्वान और विराट विद्या में सबने अपनी अपनी उपासना की बात बताई है। اور راجا اشوپتی نے سب سے کہہ دیا کہ تم ایک ایک انگ کی اپاسنا کرتے ہو، پھر انہیں ان کی اکانگی اپاسنا کی ہانی بتا کر سرگنگی اپاسنا کی اپیوگتا پرتیپادت کی، اس سے سدھ ہوتا ہے کہ سروانگ پورن اپاسنا ہی شریشٹھ اور فلدائنی ہے۔ شرتیوں میں انیک ودیاؤں کا ورنن ملتا ہے، سادھ، اما، دہر، چانڈلی، بیشوان آدی، ان سب کے نام پرکار سادھنا آدی کا پید ہونے سے سب کا پھل برہم پراپتی روپ ایک ہونے پر بھی جیسا پرتھک پرتھک ہے، یہ سادھن کو جو ودیا اپیوکت پرتیت ہوتی ہے وہ اسی کی سدھی میں لگ جاتا ہے۔ ودیا پھیل کے انسار اپلبدھی میں بھی انتر ہونا سواوت ہے۔ جو سادھک جس ودیا کے انسار اپاسنا کر رہا ہے اسے اپنی اپاسنا میں پرورتن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سبھی ودیاؤں کا پرم لکش برہم ہی ہے۔ اس لیے سدھ ہوا کہ سمچ کی آوشکتا نہیں ہے، سکام اپاسناؤں میں سب کا پھن پھن پھل کہا گیا ہے، اس لیے ایک اپاسنا سے سبھی کامناؤں کی سدھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں تو جیسی کامنا ہو اسی کے انکول اپاسنا کرے، اتوا ادھک بھوگوں کی کامنا ہو تو ان بھوگوں والے اپاسناؤں کا سمچ کر کے کرے، ادھک بھوگوں کی کامنا والا اپاسک ان اپاسناؤں کو پرتھک کرے تو بھی ٹھیک ہے، وہ جیسا اس کی اچھا اور سمرتھ پر نربھر کرتا ہے۔ ادگیت آدی یگ کے انگوں میں جو اونکار آدی کی اپاسنا کہی گئی ہے، ان میں جو اپاسنا جس انگ کے آشرت ہے اسی انگ کے انسار اس کی ویوستھا کرے۔ اس پرکار جس کرم کے انگوں کا سمچے سمبھو ہے ان انگوں سے سبندت اپاسناؤں کا ان کرموں کے سمچ کیا جا سکتا ہے۔ ادگیت آدی سوتروں کے سمچ کا شرتی میں ودھان ہونے سے ان کی آشرت اپاسنا کا سمچے بھی سوئنگ ہی سدھ ہو جاتا ہے۔ سماہارات سماہار سے بھی جے ہو سکتا ہے، شرتیوں نے کرموں کے سماہار کا نردیش کیا ہے، پٹھا ہونا اس سے ان کی آشرت اپاسناؤں کا سماہار کرنے سے بھی سمچے ہونا سدھ ہوتا ہے۔ اپاسنا کے گن اونکار کو تینوں ویدوں کے سمان پاو سے کہا ہے، اونکار سے ہی تری ودیا کی پرورتی کہی ہے، کارمانگ سے سبندت ادگیت آدی گن کا بھی سمان پاو سے پریوگ کہا گیا ہے۔ اس سے کرمنگوں کے ساتھ اپاسناؤں کا سمچ انوچت نہیں مانا جا سکتا۔ جن اپاسناؤں کے جو آشر کوٹانگ ہیں ان کے سماہار کے سمان ان کی سہ اپاسناؤں کا سماہار بتانے والی کوئی شرطی اپلبدھ نہیں ہوتی، اس لیے آشروں کے سمچ کے سمان اپاسناؤں کا سمچ ہونا سدھ نہیں ہوتا، اسے پرتھک پرتھک انشان کرنا ہی اچت پرتیت ہوتا ہے۔ شندوگ میں کہا گیا ہے کہ اس پرکار جاننے والا برہم یگ سہت یجمان اور رتجوں کی رکھیا کرتا ہے، اس سے اپاسناؤں کا کرم کے سے کرم سے ساتھ سمچ ہونا سدھ نہیں ہوتا۔ یدی ایسا ہوتا تو رتوج بھی اس تتو کو جاننے والے ہوتے اور اس رکشا برہم کو نہ کرنی پڑتی۔ تریتیا پادا سمپورنم۔